दीपिका लेक्चर नंबर एक ओम नमः सितेभ्यः ओम नमः सितेभ्यः ओम नमः सितेभ्यः ओम शुशात्मने नमो वैहंता नमो सिद्धानं नमो मायनिराणं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूणं स्वभाव विभाव परभावको ज्ञाता धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध रुसु उपाध्याय सब साधु पद नमत हो यगचु नमो वीर जिन जगत गुरु गणधर गौतम धीर इन दरसाए सब सपर भाव जुतवी सप्त तत्व मदि जीवई सुख दुख वेदन हार और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जीव सार जीव भाव त्रेपन कहे पंच भाव सामान्य इन कावरन न करत गए भाव दीप शुत जान। पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल कृत यह भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है जो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पंडित दीपचंद जी के संबंध में हम थोड़ा पढ़ के फिर आगे शुरुआत करते हैं। देखो अभी जो हमने मंगलाचरण देखा उसके दो पेज पहले यानी संपादी का दूसरा मेरे में उसका पेज नंबर 6 लिखा है नीचे पेज का नंबर नीचे डाला है 6 नंबर मिला सबको। ग्रंथकार पंडित श्री दीपचंद जी के संबंध में जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित परम कल्याणकारी अध्यात्म विषय को जनस संपादकीय के दूसरा पेज अब सुनना अभी इसमें उसमें नहीं होगा तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित परम कल्याणकारी अध्यात्म विषय को इसमें आप देखना है जनसाधारण की वस्तु बनाने में सभी लोग इसको समझे इस तरह इसको प्रस्तुत किया है। पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल का महान योगदान है। आपके अध्यात्म से ओतप्रोत अनेक रचनाएं हैं जिनमें कुछ गद्य रचनाएं हैं कुछ पद्य। गद्य रचनाओं में गद्य पद्य समझते हैं ना क्या है उल्टा बोल पद्य ने कहा उसमें भावदीपिका जो अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं चिद्विलास अनुभव प्रकाश आत्मावलोकन अपना यह अनुभव प्रकाश हो चुका है परमात्मा पुराण आदि प्रमुख है। पद्य रचनाओं में ज्ञान दर्पण स्वरूपानंद उपदेश सिद्धांत रत्न आदि है। इन सभी रचनाओं में ग्रंथकार ने अध्यात्म की धारा ही प्रवाहित की है। आपकी जाति खंडेलवाल एवं गोत्र कासलीवाल था आप सांगानेर के निवासी थे, सांगानेर जयपुर के पास है ना, बाद में आप जयपुर की राजधानी आमेर में आ गए थे, आमेर में रहकर ही आपने ग्रंथों की रचना की है। पंडित श्री दीपचंद जी कृत उपलब्ध तथा प्रकाशित ग्रंथों के आधार से आपके लौकिक जीवन विषयक परिचय इससे अधिक प्राप्त नहीं हो सका। इंदौर के प्रकाशक ब्रह्मचारी दुलीचंद जी उदासीन आश्रम ने अपने प्रकाश किए में लिखा है, इस ग्रंथ के कर्ता विद्वद वर्य अध्यात्म प्रेमी पंडित दीपचंद जी शाह मालूम होते हैं। इन्होंने ग्रंथ में अपना नाम तो प्रकट किया नहीं है, किंतु इस ग्रंथ के अंत में एक दोहा है, उससे पंडित जी का नाम ध्वनित होता है। दोहा हम पढ़ेंगे, स्वपर भाव विभाव को शुद्ध भाव जुत सोय, करी प्रकाश प्रकट किया भाव दीप ए जोय। अभी भी हमने भाव दीप शुत जान मंगलाचरण में पांचवे दोहा में देखा था। आपके ग्रंथों की भाषा विक्रम संवत 1779 के लगभग की हिंदी गद्य भाषा है, इसमें ढूंढारी तथा ब्रज भाषा मिश्रित है। पंडित टोडरमल जी की तो ढूंढारी भाषा है, आप पंडित श्री टोडरमल जी से पूर्ववर्ती हैं, उनके भी पहले हुए थे। आपकी भाषा उस समय बड़ी ही लोकप्रिय समझी जाती थी, भोले भाले लेकिन धर्म प्राप्त करने की भावना रखने वाले सामान्य लोगों का वास्तविक कल्याण होवे, उन्हें वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए परम सत्य मार्ग की उपलब्धि अवश्य होवे, इस संबंध में भावदीपिका के अंतिम अध्याय के अंत में पंडित दीपचंद जी ने अपना हृदय खोल कर रखा है, उनके ही शब्दों में हम देखे, जिन सूत्र के अर्थ अन्यथा करने लगे। जैसे मूल में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है उनका जो उपदेश था तो उसका अन्यथा अर्थ विपरीत अर्थ करने लगे। ये अभी काल दौर से क्या क्या चल रहा है उसकी बात चल रही है। ना करी यानी उससे भोले जीव तिनकी बताई प्रवृत्ति ताही विषय प्रवर्तते भय। जो उपदेशकर्ताओं ने कुछ प्रवृत्ति कुछ आचरण का ही उपदेश दिया है और भोले जीव धर्म करना चाहते हैं और वो उसी में प्रवृत्त हुए, क्रिया में प्रवर्तन ने आचरण है उसी में वो लगे रहे। नाही है सत्य सूत्र का ज्ञान जिनको, ताकरी महंत शास्त्रन का ज्ञान तिनतई अगोचर भया। यानी सिद्धांत मालूम नहीं होने से जो महान ग्रंथ है उसका अर्थ उनको समझ में नहीं आता है। ताकरी मूढ़ता प्राप्त भय हीन शक्ति भय, इसलिए उनका अज्ञान चलता रहा। सत्य वक्ता साचा जिनोक्त सूत्र का अर्थ ग्रहण करावने हारा कोई रहा नहीं, सच्चा बोलने वाला भी नहीं रहा और सत्य अर्थ करने वाला, हाँ ग्रहण करने वाला, अर्थ ग्रहण करने वाला, करावने वाला, करावने हारा यानी कराने वाला वो नहीं रहा। ताते ही सत्य जिनमत का तो अभाव भया। टोडरमल जी के पूर्ववर्ती है तो उस समय में क्या पोजीशन होगी, तो हम इस काल में भाग्यवान है कि अभी बाहर आया है मार्ग ऐसे ऐसे ज्ञानियों के द्वारा और उसका प्रचार भी हुआ और आज हम उसको जान रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे। तब धर्मतई परान्मुख भय यानी विमुख हुए, सन्मुख परान्मुख। तब कोई कोई गृहस्थ सुबुद्धि संस्कृत प्राकृत का वेत्ता भया, वेत्ता ने जानकार हुआ। ताकरी यानी उसके द्वारा जिन सूत्रन को अवगाह यानी जिन सूत्रों का अभ्यास किया, अवगाह ने उसको पढ़ा उन्होंने। तब ऐसा प्रतिभास का भया, सूत्र के अनुसार एक भी श्रद्धान ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति न करे। जो मूल सूत्र है उसके अनुसार कोई ज्ञान आचरण श्रद्धा की बात ही कोई करने वाले नहीं रहे। अभी बहुत काल गया मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति को ताकरी अति गाढ़ता ने प्राप्त भई। उसके कारण क्या हुआ, ये जो मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आचरण चल ही रहा था तो अत्यंत गाढ़ हुआ। ताते मुख करी कही माने नहीं। तो मुख करी कही यानी जो हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से वो मान नहीं रहे, यानी सत्य क्योंकि वही सुनते आए हैं और उसी को सत्य मान के बैठे हैं। तो सच्चा कोई कहने वाला भी है, मुंह से बोलेगा तो भी कहते हैं कि मानेंगे नहीं, तब जीवन का कल्याण होता जानी। जीवन कहने जीवनी का, जीवनी कहने जीवों का, पीछे मिला क्या
236 के बीच में
हिंदी है क्या? अच्छा ये उन्होंने उनकी ही बात अंत में उन्होंने अपना हृदय खोला है ना, तो लास्ट में मिलेगा आपको। तो जीवों का अकल्याण होता जानकर करुणा बुद्धि करी यानी करुणा बुद्धि से देश भाषा विषय यानी उनकी जो ढूंढारी वज्र भाषा मिक्स होती उसमें शास्त्र रचना करी, तब कई तुच्छ सुबुद्धिन के साचा बोध भया, तब जाकर किसी किसी को सत्य बोध मिला। बहुरी अब इस अवसर विषय ज्ञान की शक्ति की ऐसी हीनता भई जो भाषा शास्त्रन तय भी ज्ञान कर सके नहीं। क्या कहा? पहले तो ऐसे थे कि कोई संस्कृत प्राकृत के भी जानकार थे तो उन्होंने सत्य उसका अर्थ समझकर उसका उपदेश दिया या लिख के रखा जो कुछ है, तो वो अपने अपने देशी भाषा में उसका लिख के रखा। अभी तो ऐसी बुद्धि की वो देशी भाषा भी समझ में नहीं आ रही लोगों, ये बात बता रहे। ना ना जैनी जैनी की पूरा जैनियों की बात चल रही, अन्यमति की बात ही नहीं है। अन्यमति तो बस वो तो है ही मिथ्या दृष्टि। जिनमत सूत्र बात है ना, सूत्र के अनुसार उपदेश नहीं रहा। जिनेन्द्र भगवान ने जो सूत्र बताए है यानी उनके जो उपदेश मिला है, सूत्र की मुख्य जो गंधर्व उनके द्वारा रचना हुई है, तो वो संस्कृत प्राकृत ग्रंथ तो लोग पढ़ते नहीं है, ऐसा ही खोटा ही उपदेश चलता रहा। क्योंकि सूत्रों से मिलान करने इतनी बुद्धि नहीं है, और जो बड़े लोग कहेंगे या कोई गुरुपद धारण करके जो उपदेश देंगे वही सत्य मानेंगे। हम कोई उपदेश दे और कोई मुनिपद धारण करके उपदेश दे, किसको कौन सा सच लगेगा? क्यों भाई? ये थोड़े ही ऐसे होते हैं कि जिनको तत्व ज्ञान का अभ्यास है फिर वो सच्चा या झूठे का निर्णय कर सकेंगे या उस पर विचार कर सकेंगे। तो कहते बहुरी अब इस अवसर विषय यानी अब उनके जमाने की बात करें, ज्ञान की शक्ति की ऐसी हीनता भई कैसी हो रही, जो भाषा शास्त्रन तय भी यानी भाषा शास्त्र ने उनकी अपनी अपनी भाषा में देशी भाषा में जो शास्त्र लिखे हैं उससे भी ज्ञान कर सके नहीं। हम भी देखते ना हमारी भाषा हिंदी तो हम जानते हैं, मराठी जानते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कि नहीं उन्होंने भाषा में, तो कितने लोग उसको पढ़कर उसको समझ सकते हैं? शब्द समझना पढ़ना अलग बात है और उसका अर्थ ग्रहण होना बात अलग हो। तातई तीन महंत शास्त्रन तई, अब ये बड़े बड़े ग्रंथों की बात है, बड़े बड़े ग्रंथ लोगों ने उसको भी अपनी देश भाषा में लिख के रखे थे, उसको समझना भी लोगों के लिए दुरू हो गया यानी कठिन हो गया। अब कहते उन महान शास्त्रों से प्रयोजनभूत वस्तु काढ़ी काढ़ी, उसमें से छांट छांट कर छोटे प्रकरण करी, छोटे प्रकरणों के द्वारा एकत्र कीजिए है यानी हमने एकत्र वो स्वयं की बात करें उसको इकट्ठा किया। तातई इसलिए ऐसे अवसर विषय यानी अब इस अवसर में सम्यक ज्ञान के कारण भाषा शास्त्र ही है। क्या कहते हैं? पहले के जमाने तो संस्कृत प्राकृत मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़कर भी अर्थभाषिक होता था तो लोगों का कल्याण होता था, तो सम्यक ज्ञान का कारण यानी निमित्त कारण तो वो बन सकते थे। अभी तो देश भाषा में है महान ग्रंथ, समय सारादी भी अपनी अपनी भाषाओं में ग्रंथ रचना हुई है, परंतु वो भी पढ़कर उसका अर्थभाषित नहीं होता। तो क्या कि उसमें से भी प्रयोजनभूत वस्तु निकाल निकाल कर उसको इकट्ठे करके शास्त्र रचना की है जो सम्यक ज्ञान के कारणभूत हो जाएंगे। पंडित दीपचंद जी इसके आगे, हाँ
काल आ गया है, शास्त्र ही सम्यक दर्शन के लिए कारण बने।
हाँ अभी जो ज्ञानी उनने जो लिख के रखे हैं, क्योंकि ज्ञानी का उपदेश डायरेक्ट मिलना वो तो सबसे बड़ी बात है, परंतु अभी लोगों को विचार तो कर सकते हैं इसके ऊपर जो ज्ञानियों ने लिखा है। आगे कहीं आएगा शायद, पहले मैंने कभी पढ़ा था कि उनके जमाने में तो सुनने वाले भी नहीं थे कोई सत्य बात सुनने वाले, तो उन्होंने लिख के रखा है कि मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि ये सत्य बात सुनने वाला भी सामने नहीं मिल रहा है ना। इतने बड़े बड़े ज्ञानी थे, उनको सुनने वाले नहीं मिले। आज तो क्या सुनाने वाले भी किए और सुनने वालों की फौज है क्यों? नहीं, मैं तो कहती हूँ भले एक निकृष्ट काल है, परंतु हमारे इतने अलग अलग पुस्तकें हैं, सीरीज है, डीवीडी है, जो कुछ जो सुनना पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। पंडित दीपचे जी इसके ही आगे संस्कृत प्राकृत शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र तथा भाषा ग्रंथ विषयक अपनी संतुलनात्मक है ना, सबके कंपेरेटिव परिमार्जित वो महत्वपूर्ण दृष्टि पाठकों के सामने रखते हैं उनके ही शब्दों में। बहुरी भाषा शास्त्रंतई यानी भाषा शास्त्रों में से सम्यक ज्ञान करी शब्द विद्या यानी जिसको व्याकरण कहते हैं, न्याय विद्या अवगाह तीन संस्कृत प्राकृत रूप महंत शास्त्रों का अभ्यास करना युक्त ही है। क्या कहते हैं यानी भाषा शास्त्र यानी भाषा अपनी अपनी भाषाओं में जो बड़े बड़े शास्त्र बने हैं, तो जो व्याकरण का अभ्यास है, न्याय का अभ्यास है, उसके द्वारा उसको अवगाहन उसका अवगाहन करना है, उसको पढ़ना, उसमें अधिक विस्तार से सफल अभ्यास करना उसका, तो कहते वो करना तो युक्त ही है, वही योग्य है। परंतु सम्यक ज्ञान का अर्थी हुआ थका यानी उसका इच्छुक, सम्यक ज्ञान के अर्थ यानी उसके प्राप्त करने के इच्छुक शब्द विद्या न्याय विद्या का वो संस्कृत प्राकृत शास्त्रण का अभ्यास करना। शब्द विद्या न्याय विद्या ही विषय आसक्त हो काल न खोना। क्या कहते हैं जिसको सम्यक ज्ञान का वो इच्छुक है, भले वो व्याकरण का न्याय वगैरह का अभ्यास करे कोई बात नहीं, संस्कृत प्राकृत का भी करे, परंतु उसी में पूरा वे नहीं हो, काल पुण्य अपनी आई उसी में बीत जाए ये बात नहीं होनी चाहिए। तो कहते आसक्त तो है काल न खोना ही विषय लिखे ना, न्याय शब्द विद्या न्याय विद्या ही विषय, उसी में मात्र उसी में अगर टाइम गंवाना योग्य नहीं है। जाते ही शब्द विद्या न्याय विद्या कारण रूप है, तातई इसलिए जैसे बने तैसे काकू करना, जैसे हो सके वैसे करना, ये कोई मस्त नहीं है। परंतु भाषा शास्त्र का अभ्यास तई सम्यक ज्ञान की सिद्धि करी पीछे। क्या कहते यदि संस्कृत प्राकृत का वो न्याय उसके और उसके जो व्याकरण होते हैं उसको सीखना और संस्कृत प्राकृत का अभ्यास करना ठीक है, परंतु पहले ये कहते हैं कि जो अपनी भाषा है, जो ग्रंथ अवेलेबल है अपनी अपनी भाषाओं में, उसका अभ्यास करके पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ और बाद में इन ग्रंथों का अभ्यास भले करो। तो कहते हैं भाषा शास्त्रन का अभ्यास तई सम्यक ज्ञान की सिद्धि करी पीछे, संस्कृत प्राकृत रूप शास्त्रन का अभ्यास सुगम हो है। अपनी भाषा में अभ्यास करके बाद में संस्कृत प्राकृत में उन्हीं शास्त्रों को पढ़ो तो ये सुगम हो जाएगा। बहुरी पर्याय का भरोसा नहीं है, ये कौन सी पर्याय की बात है निकिन भाई? ज्ञान पर्याय के श्रद्धा आमनुष्य पर्याय, ये भव की स्थिति जो है। शास्त्रन का थोड़ा सा ही अभ्यास तई सम्यक ज्ञान की तो सिद्धि हो, थोड़े से अभ्यास से भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि मूल प्रयोजन भूत हमने ग्रहण किया है। जाते ही जे संस्कृत प्राकृत शास्त्रन विषय भेद माने हैं ते दुर्बुद्धि है, यानी संस्कृत प्राकृत को ही पढ़ना चाहिए, देशी भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे जो कहते हैं उसको कहते हैं दुर्बुद्धि है। संस्कृत प्राकृत भाषा रूप सर्व शास्त्र ही सम्यक ज्ञान को कारण है। भाषा के कारण वो सम्यक ज्ञान का कारण हो सकता है नहीं हो सकता ऐसी बात ही नहीं है, यानी संस्कृत भाषा में है वही शास्त्र है, देशी भाषा वाले शास्त्र ही नहीं है, ये कहना गलत है, विपरीतता है। अब हम आते हैं अपने, अभी हमने मंगलाचरण देखा है। देखते हैं नौ मंगलाचरण को, स्वभाव विभाव और परभाव को, ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ताका धारक तासुपुनी नमु चित्त धरि ध्यान। जो स्वभाव विभाव है या प्रभाव को है, सबको जानने वाला जो है सम्यक ज्ञान है, स्वभाव को स्व और ये प्रभाव को पर रूप से वो जान रहा है। और मिथ्या दृष्टि तो कैसा है, विभाव को ही अपना स्वभाव जानता है, मैं बहुत दयालु हूँ, है ना। तो एक करुणा बुद्धि को, दया भाव को, उसको अपना स्वभाव मान लिया उसने। तो ऐसे जो सम्यक ज्ञान के जो धारक है उसको बारंबार नमस्कार करता है, कैसे, ध्यान चित्त में धर के। ताका धारक, अभी उसके धारक कौन कौन है, पंच गुरु। ये कौन है गुरु, पांच, हाँ पंच परमेश्वरी को पंच गुरु कहा है। अरहंत सिद्ध और सूर, सूर यानी सूरी, जिसको आचार्य को सूरी भी कहते हैं, उपाध्याय और सभी साधु, नमत हो अगचु, उनको नमस्कार करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दिन भर पाप करो और एक बार नमोकार, ये बात नहीं है। जब उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं उस काल में पाप की उत्पत्ति नहीं होती है, तब हम कहेंगे पाप का नाश हुआ। नमो वीर जिन जगत गुरु, तीन जगत के गुरु यानी जो हम कहते हैं त्रिलोक पूज्य जो है, वर्धमान तीर्थंकर जो है, वीर जिन महावीर भगवान और उनके गणधर है गौतम, तीन दर्शाए तत्व सब, उन्होंने दर्शाए यानी उन्होंने बताया। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गणधरों ने जो आगम की रचना की है, स्वपर भाव जुत वीर, यानी उसमें स्व और पर भाव युक्त ऐसे उसमें बताया उन्होंने। सप्त तत्व मधि जीव ही सुख दुख वेदनहार, सात तत्वों में सुख दुख का वेदन करने वाला तो जीव ही है, और तत्व जड़ भाव है, और बाकी जो जड़ भाव वाले हैं, ज्ञान सहित जीव सार, और जो ज्ञान सहित ऐसा जीव, जीव यानी जीव वही सारभूत है। जीव भाव त्रेपन कहे, ये जो पांच भाव है, कौन से पांच भाव मालूम है, हाँ बोलो बोलो, हाँ सब मिलकर त्रेपन भाव है। और पंच भाव सामान्य, सामान्य से कहो तो पांच है जो अभी आपने नाम बताया, और उसी के डिटेल हमें भेद करेंगे सब डिविजन से, तो त्रेपन हो जाते हैं। तिनका वर्णन करते भाव दीप श्रुत जान, अब इनका ही वर्णन इस भाव दीपिका नाम के श्रुत ने शास्त्र में यहाँ पंडित जी करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे अभी। समस्त तत्वन का ज्ञाता, ये तत्व और तत्वन कहने से वो अनेक वचन है, हाँ, तत्वों का, ढंडारी भाषा तत्वनी का कहेंगे, यहाँ तत्वन का कहा, ये थोड़ी डिफरेंस है ना। समस्त तत्वन का ज्ञान, ये ढूंढारी प्लस व्रज भाषा मिलकर ऐसी है, वो मिक्स भाषा है, टोंडर मल जी के भी पूर्व थी, भोजपुरी नहीं, इसको ढूंढारी कहते, वज्र नहीं, ब्रज 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 और ढूंढारी,
ढूंढारी के भी पहले की थी,
हाँ वो उस जमाने की, टोंडर मल जी के पहले वाले उस समय के हैं, उसमें ब्रज भाषा भी मिक्स है, उन्होंने अभी मैंने पढ़ा था ना, अभी मैंने पढ़ा था आपको, टोडर मल जी के पूर्ववर्ती है, 1779 के लगभग, हाँ ढूंढारी और ब्रज भाषा, ब्रज ब्रज ने वो वहाँ की,
आगरा की बाजू,
हाँ मथुरा मथुरा, अभी हम पढ़ेंगे इसको। समस्त तत्वन का ज्ञाता सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे श्री वर्धमान अंतिम तीर्थंकर, समस्त तत्वों के ज्ञाता, ये तो अभी समझाने की जरूरत नहीं कि हम पढ़ चुके हैं, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी दोनों कहा, सर्वदर्शी का अर्थ क्या है, देखने ने? सर्वज्ञ ने केवल केवल ज्ञान वाले, और सर्वदर्शी ने केवल दर्शन वाले, ख्याल में बात दर्शन है ना, केवल दर्शन है उनके, तो उसको सर्वदर्शी कहेंगे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे श्री वर्धमान अंतिम तीर्थंकर, ये वर्धमान के और कोई नाम है क्या? हाँ बोलो। हाँ पांचवा कौन सा? ये अंतिम तीर्थंकर तिनकरी दर्शाए, उन्होंने जो बताए हुए और तिनके अनुसार कथन करण हारे, उसके अनुसार कथन करने वाले चार ज्ञान के धारक। ये चार ज्ञान कौन से हैं? प्रेरणम ज्ञान, मन परिज्ञान और सप्त रिद्धि करी युक्त। ये किसका वर्णन हो रहा है अभी? गौतम गणधर का। सात रिद्धियों से युक्त ऐसे श्री गौतम गणधर करी कहे। पहले किन्होंने बताया? दिव्य ध्वनि के द्वारा तो भगवान महावीर की वाणी है और उसके अनुसार कथन करने वाले गौतम गणधर है। वे कैसे? तो चार ज्ञान के धारी है और सप्त रिद्धियों के धारी उससे सहित है। उनके द्वारा कहे है ऐसे जीव के सामान्य पंच भाव और विशेष त्रेपन भाव, ये पांच भावों के ही अगर हम भेद करेंगे और भेद प्रभेद जिसको कहेंगे तो उसको कहेंगे हम उसके उत्तर भेद त्रेपन भाव, विशेष त्रेपन भाव। और वो तीन के विशेष अनेक भाव है, क्योंकि हम देखते ना उदयिक भाव ही हमने कितने देखे, 21 है, अभी उसके कितने असंख्यात लोग प्रमाण भाव भेद होंगे, तो अनेक है। सो तीनी का वर्णन कछु संक्षेपता करी, यानी इन सबका वर्णन शॉर्ट में, तिनके चरणारविंद को नमस्कार करी। ये अरविंद, ये चरणारविंद क्या होता है? अरविंद का अर्थ क्या है?
चरण कमल।
हाँ कमल, चरण रूपी। सरोज का अर्थ ही कमल है। चरणारविंद का अर्थ क्या है?
चरण कमल,
चरण कमल, चरणों को कमल की उपमा दी है तो चरणारविंद, ये ना मुखारविंद। तिनके चरणारविंद को नमस्कार करी, तिनके अनुसार कहता है। ये स्वयं सबसे पहले ऐसे वहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की वाणी के अनुसार गणधरों ने जो शास्त्र की रचना की है और जो मूल धारा चली आ रही उसके अनुसार कथन करूंगा, अपने मन से उसमें कुछ नहीं लिखा।
इसका अर्थ यही है कि लिखने वाले इतने मंद दशाई है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं। भगवान का नाम लेते हुए अगर कुछ खोटा लिखते हैं तो कितने पाप के नारी होंगे, ये जानते हुए कह रहे कि जिनेंद्र भगवान ने कही हुई बात जो गणधरों ने बताई हुई बात है उनके अनुसार मैं कहने की कोशिश करूँ। देखो उनकी कितनी नम्रता, विनय।
अभी एक क्यों वर्णन करना चाहते हैं? जाते हैं नहीं, क्योंकि जीव को स्वीय भाव की पहचान हो तो संते। स्वीय ने अपना भाव, अपने भावों की पता चल जाए तो ये जो अपने नहीं वो पर के भाव एक ख्याल में आ जाएगा ना। तो स्वीय भाव ने अपने की पहचान हो तो संते, यानी होने पर प्रभाव की पहचान होए तब प्रभाव तय आपको छुड़ावे। आपको छुड़ावे ने वो प्रभाव से हम भिन्न है, ये बात ख्याल में आ गई। यहाँ राग वाला प्रभाव नहीं, पर का भाव जो अन्य द्रव्यों के भाव उसको प्रभाव कहेंगे। यहाँ पर एक तो अपने भाव और एक पर के भाव, तो अपने भाव को पहचानेंगे तब पर के भाव ये मेरे नहीं ऐसा वो उसका विभाग भेद कर सकेगा।
यहाँ पर ये भी बता रहे कि प्रत्येक जीव स्व को भी जानेगा पर को भी जानेगा, और ये बात किसने बताई? तो गणधरों ने बताई, गणधरों ने अपना स्वभाव स्व पर प्रकाशक यानी स्व पर को जानने वाला है। यहाँ पर बता रहे
बहुरी स्वीय भाव दो प्रकार का है, जो अपना भाव कहा वो भी दो प्रकार का है। एक तो स्वभाव स्वीय भाव जिसको हम स्वभाव पर्याय कहते हैं, अपना भाव, और दूजा विभाव स्वीय भाव। जैसे क्रोध मान माया लोभ है वो जीव में उत्पन्न हो रहे हैं ना, परंतु विभाव रूप है, तो कहते विभाव रूप वो स्वीय भाव दोनों ही अपने में रहिए पहले अभी तो स्वीय भाव दो प्रकार का, एक तो स्वभाव स्वीय भाव और दूसरा विभाव स्वीय भाव, इनकी पहचान हो तब विभाव भाव को छोड़ी स्वभाव भाव विषय तिष्ठे। नहीं ऊपर की मैंने बात, मैं नीचे गई चली गई, एक मिनट। हाँ पहले स्वीय भाव और परभाव क्यों ले लिया, अब स्वभाव विभाव में लेना। स्वीय भाव भी दो प्रकार का है, स्वभाव स्वीय भाव और दूसरा विभाव स्वीय भाव। पहले किसमें किसमें डिफरेंस किया, स्वीय भाव और परभाव। अब स्वीय भाव में भी दो ली, स्वभाव स्वीय भाव और विभाव स्वीय भाव। तो जब उनकी पहचान हो जाएगी इसमें इसे स्वभाव भाव कौन सा है और विभाव भाव कौन सा है, अपने ही दोनों है परंतु उसमें स्वभाव भाव और विभाव भाव इनकी पहचान हो जाए, ये इसमें से स्वभाव भाव कौन सा है विभाव भाव कौन सा है, तब विभाव को छोड़ी स्वभाव भाव विषय तिष्ठे। पहले में पहले स्वीय भाव और परभाव को लिया, ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये कौन से, वो तो पर में चले गए, परंतु ये स्वभाव भाव ज्ञान दर्शन वो स्वभाव भाव है और राग द्वेष विभाव भाव है, तो पहले वो स्वीय भाव है ये नक्की किया, फिर उसमें पहचान की, तब वो स्वभाव भाव और परभाव विभाव भाव, विभाव स्वीय भाव और स्वभाव स्वीय भाव, इसमें भी डिफरेंस ख्याल में आया, तब क्या करेगा विभाव छोड़कर स्वभाव में तिष्ठेगा, यानी अपने को ज्ञान को ज्ञान में अपने को अनुभव करेगा, तब संपूर्ण कल्याण रूप जो मोक्ष ताकि सिद्धि हो। ये तो ग्रेजुअली होगा ना, विभाव को छोड़कर स्वभाव में परिपूर्ण रीति से ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए पूर्ण रूप से, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कल्याण रूप मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। संसार रूप दुख समुद्र तय निकलने का उपाय स्वभाव विभाव प्रभाव का जानना ही है। क्या क्या छोड़ना इसमें जानना, ये सारा कार्य ज्ञान में ही होने वाला है। तो कैसा किलो मिलता है ज्ञान, कहाँ से लाना देखो जो जैसा है उसको वैसा जानना है बस। भगवान करी भाषित, यानी भगवान के द्वारा बताए हुए बोलूं।
जब भगवान सबको ज्ञान दे रहे थे तो कहाँ गया था तू? ये कहने का तात्पर्य कि ये दूसरा कोई देता है ये खोटी मान्यता चल रही है।
भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान मुझे बुद्धि दे दो ऐसे हाँ। कहते थे ना मुझे।
और हम भी ऐसे ही थे, हमारे
घर में छोटे बन तो ऐसे ही थे ना,
तो हाथ जोड़ के बोलते थे भगवान नहीं नहीं मेरे माता पिता को सुखी करो, उसको सुखी करो बोलने से तो क्या बोलते हैं स्वार्थ है, ये तो हम ऐसा बड़ा बहुत अच्छा भाव रखते हैं, मालूम नहीं घर को सुखी नहीं
करते। कम पड़ेंगे अभी। भगवान करी भाषित, यानी जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित उन्हें द्वारा बताए हुए जे सप्त तत्व, ये कंडीशन डाली है जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए ये सात तत्व होने चाहिए, क्योंकि हरेक जो कोई इज्म है वो अपने अपने तत्व बताते हैं, तो किसी एक सूक्ष्म ज्ञानी ने बताए हुए बनाए हुए की बात नहीं है, मूल बात ये भगवान के द्वारा जो प्ररूपित है सप्त तत्व। ये कौन से सप्त तत्व, तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व है। तीन में चेतना स्वरूप जीव तत्व है, ताको पहचानी आप मानना कि यह जीव तत्व जो है सो मैं हूं। पहले क्या कहा, उसको पहचानना और आगे कहते मानना, मानने की बात है, मानना क्या है कि यह मैं हूं, यह जीव तत्व जो है सो मैं हूं, और जीव तत्व को पहचानना कैसा, तो वो चेतना स्वरूप है। तो हम अपने को कहाँ पहचानने की शुरुआत करते हैं, गोरा है कि काला है, ठिंगना है कि ऊंचा है। तो अपने को पहले पहचानना है कि ये जो चेतना स्वरूप है वह जीव तत्व है, वो मैं वह जीव तत्व हूँ, मैं चेतना स्वरूप हूँ। बहुरी चेतना रहित जड़ स्वरूप अजीव तत्व, ताको पहचानी, उसको पहचान कर शरीरादिकनी कु आप तय परमानना। शरीरादि में जो जो जड़ वस्तुएं हैं उन सबको अपने से परम मानना, मानने की बात है। सात तत्वों में मान्यता कैसे रखनी उसकी बात चल रही। पहले हम तत्वों का स्वरूप जानेंगे, अब उन सात ही तत्वों में क्या कैसा उसको मानना है, प्रतीति में कैसे लेना है। तो जीव तत्व तो मैं हूँ, और अजीव जो शरीर आदि जो अजीव तत्व है उसको कैसे मानना है, अपने से पर मानना, यह मैं नहीं हूँ ऐसा उसको स्वीकार करना है। आश्रव तत्व दो प्रकार का है, एक भावाश्रव दूजा द्रव्याश्रव। अभी आगे के जो ये पहले दो है वो तो द्रव्य तत्व है, और आगे के जो है वो पांच जो है पर्याय तत्व है, वो जीव की भी पर्याय है और पुद्गल कर्म की भी पर्याय है। तो हर एक में द्रव्य भाव ऐसे लगाएंगे, जीव की जो है उसमें भाव शब्द लगाएंगे और पुद्गल की है कर्म की उसको द्रव्य शब्द लगाएंगे। तहा मिथ्यात्व रूप कषाय भाव रूप जो जीव का परिणाम सो भावाश्रव जानना। तातई ये भाव दर्शन मोह और चारुत्र मोह के उदयतय होए तातई विभाव भाव है। क्या कहते हैं, ये विभाव भाव में कर्मों के उदय का निमित्त बनता है। तो इसलिए उसके निमित्त की तरफ से उसके विभाव का उन्होंने डेफिनेशन कैसे बनाया कि दर्शन मुनि और चारित्र मुनि के उदय से होते हैं, इसलिए ये विभाव भाव है। बहुरी जीव के रागादि कषाय भावनी को निमित्त पाए, पुद्गल कर्म वर्गणा का कर्मत्व शक्ति को धारी योग द्वार होए आवना सो द्रव्याश्रव है। द्रव्याश्रव किसको कहना कि जो नए कर्म आते हैं उसको द्रव्याश्रव कहा। वो क्या है, पहले हमने देखा था कि दर्शन मुनि और चारित्र मुनि के उदय से जीव के जो भाव होते वो भावाश्रव, और जीव के जो मोराग द्वेष परिणाम है उनके कारण जो नए परमाणु कर्मत्व को प्राप्त होते हैं उसको कहेंगे द्रव्याश्रव। सो इन दोनों ही प्रकार के आश्रव को हे ये जानी इनका अभाव करना। जीव तत्व को कैसा माना था, यह मैं हूं, और अजीव को अपने से ये पर है ऐसा मानना, और आश्रव को हे ये जानकर इसके यानी छोड़ने योग्य है ऐसा उसको स्वीकार किया। बहुरी बंध तत्व भी दो प्रकार का है, एक भाव बंध दूजा द्रव्य बंध। तहां भाव बंध तो आत्मा का रागादि रूप सचिक्कण भाव सो विभाव भाव जानना। सचिक्कण में चिकना छूटता नहीं है, उसमें ही जीव अटका हुआ है। तो रागादि रूप सचिक्कण भाव सो विभाव भाव जानना। और जो योग द्वार करी आई कर्म वर्गणा, योग द्वार करिणी, योग के द्वारा कर्म और नौकर्म का ग्रहण होता है, यहाँ कर्मों की बात करते हैं। जो कारमान वर्गणा को ग्रहण करके वो कर्मरूप परिणमित हो जाती है उसमें योग निमित्त है। ऊपर भी देखा ना, भावाश्रव है और उसके निमित्त से पुद्गल कर्म वर्गणा कर्मत्व शक्ति को धारण करती है और योग द्वार से वो आती है यानी ग्रहण होता है उसका। अब यहाँ क्या कहा, योग द्वार के द्वारा जो कर्म वर्गणा आई है उनका प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप चार प्रकार बंध भाव को धरी आत्मा के प्रदेश नितई एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो द्रव्य बंध कहिए। क्या कहते हैं, ये द्रव्य बंध है क्या है, तो जो कर्म वर्गणा है वो कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ वो अदादि का तो कर्म पड़ा ही है, पुराने छूटते जाते हैं नए नए आते हैं, तो जो आने वाले जो कर्म है कर्मानुवर्गना कर्म रूप होकर वो जो वहां ऑलरेडी जो कर्म है उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप होकर तिष्ठते हैं। ये एक क्षेत्रावगाह समझते हैं, सो ये पौद्गलिक प्रभाव जानना, ये द्रव्य बंध है वो पौद्गलिक प्रभाव। इन दोनों ही प्रकार के बंध को अहित जानी न करना, हम तो राग आदि को हित रूप जानकर करते रहते हैं। ये चराला में लिखा है ना, राग आदि प्रकट ये दुख देना, दिन ही को सेवत गिनत चाहिए, यानी वो करते हुए मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानता है। संवर तत्व भी दो प्रकार का है, एक भाव संवर दूसरा द्रव्य संवर। तहां रागादिक भावन का निरोध कहिए रोकना सो भाव संवर है, रागादि के उत्पन्न न होना रोकना, उसको शब्द ऐसे यूज करेंगे, रोकना नहीं, जो ऑलरेडी हुआ है उसको क्या रोकेंगे और जो हुआ नहीं उसको क्या रोकेंगे। तो स्वरूप में लीनता करने से रागादि की उत्पत्ति जितने जो जो नहीं होगी, मान लेते अभी चौथे गुणस्थान वाले का अनंतानुबंधी का उत्पन्न नहीं होना, उसको वहां वो संवर कहेंगे। जो आ रहा है हो रहा उसको आश्रय बंध भी कहेंगे। तो रागादिक भावों का निरोध कहिए रोकना सो भाव संवर है, कहेंगे ऐसा इच्छा निरोध स्तप, तो हम इच्छा को दबा दबा के रखना चाहते हैं, वो बात नहीं है, उत्पत्ति के न होने को वहां निरोध कहते हैं। और वो रागादिकन का निरोध होते कर्माश्रय का निरोध होना रुक जाना सो द्रव्य संवर है, क्योंकि रागादिक के निमित्त से नए कर्म आते हैं। अब वहां मान लेते अभी अनंतानुबंधी हुआ ही नहीं, तो उसके निमित्त से बनने वाले कर्म आने वाले कर्म भी नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे। आगे चलकर मुनि हो गए तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उनके निमित्त से बनने वाले वहां नहीं हो गए, तो उतना वहां संवर हो गया। जेता काल भाव संवर तेता ही काल द्रव्य संवर जानना, जेतना ही जितने काल तक। भाव संवर स्वभाव भाव है और द्रव्य संवर पर भाव है, क्योंकि वो कर्मों का आना रुक गया है ना, तो पर भाव में चला जाए। बहुरी निर्जरा तत्व भी दो प्रकार का है, एक भाव निर्जरा दूजी द्रव्य निर्जरा। तहां रागादिकन का अविभाग प्रतिच्छेद समय समय क्षीण होना भाव निर्जरा है। रागादिकों के अविभाग प्रतिच्छेद कम होना यानी उसकी इंटेंसिटी कम होना, कषाय मंद मंद होते चले जाते हैं और वहां तो वितरकता बढ़ती रहती है। और ज्ञानावरणादि कर्मों का समय समय कर्मत्व शक्ति को छोड़ी जीव के प्रदेशों से छूटना सो द्रव्य निर्जरा है। रागादिकों में तो अविभाग प्रतिच्छेद क्षीण होना की बात की उन्होंने, अनुभाग घटकर उदय में आना उसका, और यहाँ जीव के प्रदेशों से छूट जाना उसको द्रव्य निर्जरा कहा। तहां द्रव्य निर्जरा के दो भेद, एक सविपाक निर्जरा दूसरी अविपाक निर्जरा। ये नाम सुने क्या सुशीला भी? तीन में जो अपनी स्थिति पूरी करी कर्मों का समय समय उदय होए और वो रस दे कर्मत्व शक्ति को छोड़ी जीव के प्रदेशन सो छूटना सो सविपाक निर्जरा कहे। क्या कहना चाहते हैं, जब कर्म का बंध होता है तो उसमें स्थिति बंध होता है, बाद में उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, परंतु अभी जब उदय में आ रहे हैं तो अपनी अपनी स्थिति पूरी कर उदय में आ रहे हैं। और क्या केवल वो समय समय उदय हो जो लिखा है, आगे क्या लिखा है, रस दे ने उसे अनुभाग फल देकर कर्मत्व शक्ति को छोड़ी, वो उसका फल मिलेगा तो वो कर्मत्व से अकर्म रूप हो जाएंगे। उसके कौन सी वर्गना होगी क्या है वो तो अपने को उसको कुछ लेना देना, वो पर है ना, नक्की किया ना, तभी उसका क्या होता है उसी उसी को देखना है। वो कर्म छूटकर कहाँ गए, वो अपने नहीं है छोड़कर गए, जब छोड़े नहीं थे तब भी अपने नहीं थे, इतना नक्की करना है। तो रसद यानी अनुभाग का उदय होगा और कर्मत्व शक्ति को छोड़कर जीव के प्रदेशों से छूटना सो सविपाक निर्जय। सविपाक, विपाक यानी कर्मों का फल, उदय का फल। बहुरी, सम्यक्त्व चारित्र के तप के बल से, यानी सम्यक्त्व के बल से और चारित्र के तप के बल से समय समय प्रति असंख्यात समय प्रबद्ध की बिना रस दिए ही गुणश्रेणी निर्जरा हो सो अविपाक निर्जरा कही है। सम्यक दर्शन होने पर यहाँ जितना अनुभाग होगा वैसा तो उदय नहीं होगा, और कितने ही अन्य रूप होकर भी उदय में आते हैं तो बिना रस दिए ही उसकी निर्जरा हो जाती है, तो कहेंगे अविपाक निर्जरा। जैसे सम्य दर्शन हो गया, अनंतानुबंधी छूट जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि सत्ता में पड़े रहेंगे सारे, तो क्या होगा, वो इकट्ठे होकर बाद में सब इकट्ठे होकर उदय में आएंगे। तो प्रति समय जो उनकी स्थिति पूरी हुई है वो अप्रत्याख्यानादि रूप होकर उदय में आएंगे, तो अपने रूप से उसका फल नहीं मिल रहा है, परंतु वो निर्जरा तो हो रही उनकी, उनके प्रदेश तो उदय में आ रहे हैं परंतु अनंतानुबंधी रूप से नहीं आएंगे, अन्य बारह कषाय रूप से होकर उदय में आकर खींच जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, अविपाक निर्जरा। सो सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों के हुए हैं, क्योंकि अपनी अपनी स्थिति होने पर वो तो उदय आते रहते हैं उसका फल मिलके। और अविपाक निर्जरा सम्यक दर्शनादिक तय ही हुए है, ही लगाए। सो संवर और निर्जरा को हित का कारण जानना तातई ताको ग्रहण करना। ये कैसे उपादेय, हाँ हाँ, सम्यक्त्व के और चारित्र के कारण होने वाली जो अधिक प्रमाण में जो निर्जरा है, गुणश्रेणी निर्जरा को यहाँ लिया है मुख्यतः से, उसका वो बताना चाहते हैं। वैसे सामान्य से भी वो निर्जरा चलती रहती है। मैंने बिना समय दर्शन के कोई शुभ भाव किए है, व्रत अंगीकार किया है, बाह्य तप अंगीकार किया है, तो उससे कुछ ये गुणित प्रमाण में ऐसी निर्जरा नहीं होगी, उसकी भी सविपाक निर्जरा होगी, उसके भी स्थिति पूरी होकर उदय में आकर फिर जाएगी। और वहां तो सविपाक निर्जरा हो रही है तो नए कर्म भी बन रहे हैं उसके साथ। वो अलग है, सकम अकम और अलग है।
उसमें क्या भेद है, माने इससे
देखो, सकाम निर्जरा या अविपाक निर्जरा के समान है, और अकाम निर्जरा कोई शांत परिणाम से कोई विपरीत उसके कोई अनिष्ट संयोग है और शांति से वो भद्र परिणाम ही रहता है, तो ये उसके अकाम निर्जरा, यानी वो साता विघ्नि जो अन्य जो कुछ कर्मों का उदय है वो तो चल रहा है, परंतु अधिक संकलेश करके तीव्र पाप बंद करता उसके बदले उसने शांति रखी, परंतु वो मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है, इसलिए उसको अकाम निर्जरा के। गौरी, मोक्ष भी दो प्रकार है, एक भाव मोक्ष, दूजा द्रव्य मोक्ष। तहा ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय, इन चार घात्या कर्मों के अभाव होते संते अनंत चतुष्टय का प्रकट होना अरिहंत को पद को प्राप्त होना सो भाव मोक्ष है। अरिहंत अवस्था होते ही वहां भाव मोक्ष के लिए। तथा सर्व कर्म तय छूटी, सर्व कर्म ने आठो कर्म, सर्व परद्रव्यन तय भिन्न होए, सभी परद्रव्यों से भिन्न होकर आत्मा सिद्ध क्षेत्र विषय तिष्ठ है। ये तो अभी भी कल ही बात हुई ना, लब्धि सार अपना पूरा हुआ तो क्या अयोगी के बाद सिद्ध परमात्मा की बात आई थी, सौ द्रव्य मोक्ष है, उसको द्रव्य मोक्ष कहा। यानी कर्मों का सर्वथा अभी वहां छूट गया है, उससे रहित हो गया जी। सो मोक्ष तत्व को अपना परम हित जानना। ऊपर क्या लिखा है, संवर निर्जरा को क्या लिखा है, कौन बताएगा? हित का कारण बताया और ये परम हित बताया। तो इसको हम उपादेय कहते हैं। तो ये परम हित यानी पूर्ण रूप से प्रकट करने योग्य है। संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य है। और जीव तत्व को कैसा, वो हम मैं हूं ऐसा जानना है, वो तो आश्रय करने योग्य उपाय। ऐसे ये सप्त तत्व कहे, ये तो हमारा विषय बहुत बार हुआ है अपना, ये तो बेसिक सात तत्व का विषय तो बेसिक है। तीन विषय, जीव तत्व तो आप जानने के अर्थ ही कया, क्या कहा, जीव तत्व क्यों, ये सात ही तत्व क्यों कहे? तो जीव तत्व इसलिए कहा कि मैं कौन हूं ये जानने के लिए। और अजीव तत्व पर जानने के अर्थ ही कया, तो सात तत्व को जानो। तो अजीव तत्व कैसा है, ज्ञेय है क्या, उपादेय क्या है, ज्ञेय है ना, ज्ञेय। तो कैसा ज्ञेय, तो हम दिन भर वो ज्ञेय है ना, उसी को ताकते रहते जानते रहते। कैसा जानना था, यह मैं नहीं हूं इतना जानना था। हमने ज्ञेय जाना ना, तो बस उसी को जानने में लगे रहे। क्या करते हो, मैं जानता देखता रहता हूँ, कभी टीवी देखता हूँ, कभी वो शेयर के भाव देखता हूँ, कभी ये देखता हूँ, सबको जानता रहता। तो कहते अजीव तत्व पर जानने की अर्थी कया है, और बाकी पंच तत्व स्वीय भाव परभाव विभाव भाव जानने की अर्थी कया। देखो कितना अच्छा है, जो पांच तत्व जो है उसमें स्वीय भाव, स्वीय भाव में भी दो बताए हैं, परभाव और विभाव भाव। अब जो जो कर्म की अवस्था है वो सारे परभाव में डालो। स्वीय भाव में जो आश्रव बंध है वो स्वीय भाव होते हुए भी विभाव है, और जो संवर निर्जरा जो है, मोक्ष जो है, वो स्वीय भाव कैसा है, स्वभाव भाव नहीं। हाँ, इसके उसको जो जैसा है उसको वैसा जानना है। अब अरु जान करी, यानी उसमें स्वीय भाव कौन सा है, स्वीय भाव में भी दो लिए, स्वभाव स्वीय भाव और विभाव स्वीय भाव और फिर प्रभाव, इनको जानकर स्वभाव का ग्रहण करना, प्रभाव तथा विभाव भाव को छोड़ना। स्वभाव को ही जानना ना मात्र, अरे पहले सबको जानकर वो उसमें स्वीय भाव कौन है प्रभाव कौन है नक्की करना पहले। ताते जीव अजीव इन दो सामान्य तत्व ही को जानी, आपा पर के ज्ञान करी संतुष्ट हो, और जीव अजीव के पांच आश्रवादी विशेष भाव तत्व को न जाने, इनका त्यजन ग्रहण न करे, तो सामान्य तत्व के जाने कुछ भी कार्य सिद्ध न हो है। क्या कहना चाहते, सात तत्व में क्या जाना, बस यह मैं हूं ये पर है, ये मैं जीव हूं और ये अजीव है। तो कहते इतना जानने से कुछ नहीं होगा। तो कहते दो सामान्य तत्व को ही जानू और ये स्व का और पर का ज्ञान होकर संतुष्ट हो जाए, और जीव अजीव के जो पांच आश्रवादी विशेष भाव कहे है उसको अगर नहीं जानेंगे, और उसमें कुछ ग्रहण करने योग्य है और कुछ छोड़ने योग्य है, उसको जानेंगे ही नहीं, उसका निर्णय ही नहीं करेंगे, तो सामान्य तत्व जानने से कुछ फायदा नहीं। मात्र मैं ये जीव हूं और बाकी वो पर है या जीव है, इतना मात्र जानने से कुछ नहीं होगा। तात्पर्य भाव ही का जानना कार्यकारी है, ये हम है ही भाव स्वरूप, और उसमें वो स्वीय भाव विभाव प्रभाव आदि को ये जानना है, तो भावों का जानना ही कार्यकारी है। जानना यानी जो जैसा है उसको वैसा ही ग्रहण करना है ज्ञान। यह ग्रंथ भावन का प्रकाशक है, यानी भावों का प्रकाशक, भावों को बताने वाला है। ये सब हमें पांच भाव यहाँ सीखेंगे। तातेया का नाम भाव दीपिका सार्थक है। आगे भावनी का कथन कीजिए। पहले तो इंट्रोडक्शन बताए कि ये भावों को क्यों जानना है। तो भावों को जाने बिना मात्र ये जीव है और जीव इतना सामान्यपने से जानने से कुछ कार्यकारी नहीं है, इसलिए भी पांच भावों का निरूपण यहाँ चलेगा। चौथे पृष्ठ पर आए हैं, कहाँ जीव के सामान्य भाव तो पांच है, यहाँ सामान्य कहा और तत्व सूत्र में इसी को असाधारण कहा, तो क्या है विरुद्ध है ना, यहाँ सामान्य और वहाँ विशेष कह दिया, क्या है कि सही
सामान्य भाव सब सब में जो रहते हैं सामान्य भाव,
और तो ये सामान्य भाव सब द्रव्य में हो गए
जीव द्रव्य में।
आप बताएंगे नलिन भाई, और वहाँ उसको असाधारण क्यों कहा?
यूके ही है अन्य,
देखो देखो वहाँ जो असाधारण कहा है वो जीव में है अन्य में नहीं, इसलिए असाधारण कहा, और यहाँ जो सामान्य और विशेष कहा तो त्रेपन भाव कहना वो विशेष है और उसके मूल भेद कहना वो सामान्य, इस अपेक्षा यहाँ सामान्य। हाँ इन्हें उसके और डिटेल्स जानना उसको विशेष कहा, ख्याल में ना, सब जीवों के है इसलिए सामान्य ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि सब जीवों के तो पारिणामिक है, तक्षायिक भाव तो सबको नहीं है, औपशमिक भाव सबको नहीं है, औदयिक सबके अलग अलग है, ख्याल में ही बात, और सिद्धों के तो औदयिक है ही नहीं है, तो इसलिए सामान्य नहीं कि सब जीवों के है। सामान्य क्यों कहा? इसके विशेष कहना नहीं डिटेल कहना, उसके भेद प्रभेद करना उसको विशेष कहेंगे और उसको इकट्ठा कहेंगे उसको सामान्य कहेंगे, तो है तो ये जीव के असाधारण भाव। तो ये पांच है उनके नाम देखेंगे अभी हम और फिर बाकी बात कल देखेंगे, पारिणामिक, औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक, कल इसको पढ़ेंगे हम आगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सोवाणी मस्तक नमो सदा।